शांति, ओम शांति। इस संगम युग पर हम बच्चों की प्रीत शिव बाबा से जुड़ती है, भक्ति मार्ग में भी भगवान से तो प्रीत थी लेकिन पहचान नहीं थी। अभी भगवान ने अपनी पहचान देकर अपने साथ प्रीत जुड़वाई है। तो भगवान से प्रीत होने से क्या होता है? बाबा कहते हैं कि भगवान से जब प्रीत रखते हो तो उसके लिए मरना पड़ता है। वैसे भी मानते हैं कि मरने के बिना न भगवान मिलता है न स्वर्ग मिलता है। भगवान से मिलना है, स्वर्ग में जाना है तो मरना पड़ेगा। तो बाबा भी हमें कहते हैं, बच्चे तुम यहाँ भगवान से प्रीत क्यों रखते हो? मरने के लिए। अब कोई किसी से प्रीत मरने के लिए रखता है क्या? अगर किसी को कहा जाए कि तुम इससे प्रीत रखोगे तो मर जाओगे, तो उससे प्रीत रखेंगे क्या? लेकिन बाबा हमें कहते हैं तुमको मरना पड़ेगा, तब माना जाएगा कि सच्ची प्रीत है भगवान से। और इसी मरने में ही सुख समाया हुआ है। तो दुनिया में तो मरना शब्द सुनते ही डरते हैं, और हम यहाँ कहते हैं हम तो आए हैं जीते जी मरने। भगवान से सच्ची प्रीत रखने तो दुनिया से तो मर गए। हाँ, सभी यहाँ मरे हुए बैठे हैं ना। वहाँ बाबा कहते तुम सब मरे हुए बैठे हो दुनिया से। तो आज की मुरली है सच्ची प्रीत बाबा से रखना माना मरना। तो उसके लिए गीत कौन सा होगा? मरना तेरी गली में, वो भी है। दूसरा कौन सा गीत है? दूसरा कौन सा गीत है? महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। तो हम सब ने भगवान से प्रीत रखी है मर कर फिर भगवान की दुनिया में जीने के लिए। हाँ, वैसे तो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, भगवान से प्रीत बुद्धि विजयन्ति। तो प्रीत रखी तो विजयी बनेंगे, लेकिन फिर मरना तो पड़ेगा। और फिर बाबा ने उस दिन भी कहा कि तुम सबसे होलीएस्ट हाईएस्ट और रिचेस्ट बनते हो, सबसे धनवान बनते हो। तो कैसे बनते हैं धनवान, वो भी बाबा ने युक्ति बताई। हाँ, बाबा कहते हैं बस जीरो जीरो लगाते जाओ धनवान बनते जाएंगे, है ना। तीन बिंदी तो बाबा बताते ही हैं, आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी, ड्रामा बिंदी। पर आज बाबा ने बिंदी को किस रूप में लिया है? बाबा की याद, वो भी तो बिंदु है ना। तो बिंदु को बिंदु से मिलाना है, तो बिंदु को बिंदु से मिलाया तो धनवान बन जाएंगे। एक उससे जीरो 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 जोड़ते जाओ तो इतने धनवान बन जाएंगे दुनिया में सबसे रिचेस्ट। तो वो भी बाबा युक्ति बताते कैसे। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 18 फरवरी 2026 है। मीठे बच्चे, तुम इस यूनिवर्सिटी में आए हो पुरानी दुनिया से मर कर नई दुनिया में जाने लिए। हम इस यूनिवर्सिटी में आए हैं पुरानी दुनिया से मर कर नई दुनिया में जाने लिए। अभी तुम्हारी प्रीत एक भगवान से हुई है। प्रश्न है, किस विधि से बाप की याद तुम्हें साहूकार बना देती है? किस विधि से बाप की याद तुम्हें साहूकार बना देती है? उत्तर है, बताया भी, बाप है बिंदु, बिंदी, तुम बिंदु बन बिंदु को याद करो तो साहूकार बन जाएंगे। अच्छी है ना युक्ति, बिंदु बन बिंदु को याद करो तो साहूकार बन जाएंगे। एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, मैं ये बिंदु, बाबा बिंदु, और ये बिंदु को हम याद कर रहे हैं तो साहूकार बन जाएंगे। जैसे एक के साथ बिंदु लगाओ तो दस, फिर बिंदु लगाओ तो सौ, फिर बिंदु लगाओ तो हजार हो जाता। ऐसे बाप की याद से बिंदु लगता जाता है, बाबा की याद से बिंदु लगता जाता है, और तुम धनवान बनते जाते हो। हाँ, कितनी सरल विधि है, याद में ही सच्ची कमाई है, याद में ही सच्ची कमाई है। तो गीत है, महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए, ओम शांति, ओम शांति। इस गीत का अर्थ कितना विचित्र है, प्रीत बनी है किसके लिए, किससे बनी है, पहले किसके लिए फिर किससे, प्रीत बनी है किसके लिए और किससे बनी है प्रीत, भगवान से, क्योंकि इस दुनिया से मर कर उसके पास जाना है। ऐसे कभी किसके साथ प्रीत होती है क्या, जो मरने के बाद ही मिलते हैं, ऐसे कोई किसी से प्रीत होती है क्या, जो ये ख्याल में आए कि मर जाएंगे फिर कोई प्रीत रखेंगे, मरने के लिए थोड़ी प्रीत रखी जाती है, फिर कोई प्रीत रखेंगे। गीत का अर्थ कितना वंडरफुल है, क्षमा से परवाने प्रीत रख, फेरी पहन पहन जल मरते हैं। बाबा तीन पर्व, तीन प्रकार के परवानों की बात करते हैं। एक परवाने होते हैं वो तो दूर से ही, वो सेक सहन नहीं कर सकते तो दूर से ही चले जाते। दूसरे परवाने होते हैं जो नजदीक तो आते हैं पर वो सेक लगता है क्षमा का, तो घूमते रहते हैं लेकिन फिदा नहीं होते हैं, फिर घूम घूम करके चले जाते हैं। पर तीसरे वो है जो वो क्षमा का इतना आकर्षण है जो तुरंत जा करके उस पर फिदा हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, क्षमा से परवाने प्रीत रख, फेरी पहन पहन जल मरते हैं। तुमको भी बाप की प्रीत में यह शरीर छोड़ना है, हमारा शरीर छूटे तो बाबा की प्रीत में छूटे। तुमको भी बाप की प्रीत में यह शरीर छोड़ना है, अर्थात बाप को याद करते करते शरीर छोड़ना है। ये गायन सिर्फ एक के लिए है, प्रीत करते करते हाँ शरीर छोड़ना, ये गायन केवल एक भगवान के लिए ही है। वो बाप जब आता है तो उनसे जो प्रीत रखते हैं उनको ये दुनिया से मरना पड़ता है। इसीलिए गीता में भी आता है, देह से देह के सब संबंधों को भूलो, उनको मारो, तो उनको मारो परंतु फिर हमको भी तो मरना पड़ेगा, उनको इस दुनिया से मरना पड़ता है। भगवान से प्रीत रखते हैं तो मर कर फिर कहाँ जाएंगे, चलो भगवान से प्रीत रखी और मर गए फिर कहाँ जाएंगे, जरूर भगवान के पास ही जाएंगे, और कहाँ जाएंगे, मरने के बाद तो भगवान के पास ही जाएंगे। मनुष्य दान पुण्य तीर्थ यात्रा आदि करते हैं, क्यों करते हैं सब इतनी भक्ति, भगवान के पास जाने के लिए। शरीर छोड़ने समय भी मनुष्य को कहते हैं ना, भगवान को याद करो। अब उसका शरीर छूट रहा है और वो उसको याद करे, उसको याद करता, उसको याद करता है, तो सब क्या कहते हैं, अभी सबको भूलो, अब भगवान को याद करो, तुमको भगवान के पास जाना है। तो बाबा कहते शरीर छोड़ने समय भी मनुष्य को कहते हैं ना भगवान को याद करो। भगवान कितना नामी ग्रामी है, फेमस है बहुत, भगवान सब भगवान का नाम लेते हैं तो कितना फेमस है वो, नामी ग्रामी है। वो आते हैं तो सारी दुनिया को खत्म कर देते हैं। कैसा भगवान है, सारी दुनिया को खत्म करते हैं। इसलिए देखो महाकालेश्वर का मंदिर है, महाकाल को याद करना माना महाकाल आएगा तो क्या करेगा, सारी दुनिया को खत्म, सबको मारेगा ना। तो बाबा कहते हैं वो आते हैं तो सारी दुनिया को खत्म कर देते हैं। तुम जानते हो हम इस यूनिवर्सिटी में आते हैं पुरानी दुनिया से मर कर नई दुनिया में जाने के लिए। ऐसे ही नहीं मरते, हमको पता है कि अगर हम इस दुनिया से मर जाएंगे तो हम नई दुनिया में जिएंगे। नई दुनिया में जाने के लिए इस पुरानी दुनिया से मरते हैं। पुरानी दुनिया को पतित दुनिया हेल कहा जाता है, तो बाप नई दुनिया में जाने का रास्ता बताते हैं। भगवान आएंगे तो नई दुनिया में जाने का रास्ता बताएंगे, बताते हैं सिर्फ मुझे याद करो। क्या है रास्ता नई दुनिया में जाने का, सिर्फ मुझे याद करो। मैं हूँ हेवनली गॉड फादर, उस फादर से तो तुमको धन मिलता है, मिल्कियत मकान आदि मिलेंगे, बच्चियों को तो वर्षा मिलना नहीं है। अब उस समय 60s में तो बेटियों को तो वर्षा नहीं देता था, पिता का वर्षा केवल बेटों के लिए होता था। माँ बेटी तो शादी करके दूसरे घर में चली गई तो उनको नहीं देते थे, आजकल तो देते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चियों को तो वर्षा मिलना नहीं है, उनको तो दूसरे घर भेज देते हैं, ससुराल भेज देते हैं, दहेज जरूर देते हैं। तो परंतु अभी तो बेटी भी अपना हक लगाती है, गोया वो वारिस नहीं ठहरी। ये भगवान तो सभी आत्माओं का बाप है, सब बेटे हैं भगवान के लिए तो सब बच्चों को मिलता है हक। ये भगवान तो है सभी आत्माओं का बाप, इनके पास सबको आना है, सबको उस बाप के पास जाना है। कोई समय जरूर बाप आते हैं, सबको घर ले जाते हैं, क्योंकि ऐसे तो नहीं जा सकते हैं जब तक वो बाप खुद न आए और खुद न ले जाए, इसीलिए उसको आना पड़ता है ले जाने लिए। कोई समय जरूर बाप आते हैं, सबको घर ले जाते हैं, क्योंकि नई दुनिया में तो बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, इतने सब तो नहीं जाएंगे नई दुनिया में, थोड़े मनुष्य होते हैं। पुरानी दुनिया में तो बहुत है, कितने मनुष्य है, कहा 9 लाख और उसकी भेंट में दुनिया अभी कितनी बड़ी, कितने हैं। पुरानी दुनिया में तो बहुत मनुष्य है, तो फिर साथ साथ मनुष्य भी बहुत है तो दुख भी बहुत है, इसलिए पुकारते हैं। बापू गांधी भी कहते थे हे पतित पावन आओ, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम बुलाते रहते थे, भजन गाते रहते थे बापू गांधी जी। बापू गांधी भी कहते थे हे पतित पावन आओ, सिर्फ उनको जानते नहीं थे, राम को बुलाते लेकिन कौन सा राम, बाबा कहते जानते नहीं थे। समझते भी हैं पतित पावन परम पिता परमात्मा है, वही वर्ल्ड का लिबरेटर है। राम सीता को तो सारी दुनिया नहीं मानेगी, पतित पावन सीता राम, अगर वो त्रेता युग वाला सीता राम है तो फिर तो सारी दुनिया तो उसको मानेगी नहीं। सारी दुनिया तो परम पिता परमात्मा को लिबरेटर गाइड मानती है। लिबरेट किससे करते हैं, दुखों से लिबरेट करते हैं। अच्छा दुख देने वाला कौन, भगवान तो दुखों से छुड़ाते हैं, पर दुख देने वाला कौन, बाप तो दुख दे न सके। ऐसे तो नहीं कि भगवान ही दुख देगा भगवान ही सुख देगा, भगवान तो दुख दे नहीं सकता, बाप तो दुख दे न सके क्योंकि वो तो पति पावन है, तो पावन बनाता है तो सुख देगा ना, पतित थोड़ी बनाता है जो दुख देगा। वो तो पतित पावन है, पावन दुनिया सुख धाम में ले जाने वाला है। तुम हो उस रूहानी बाप के रूहानी बच्चे, तो जैसा बाप वैसे बच्चे। वो रूहानी है बाप तो हम रूहानी बच्चे हैं, जैसा बाप वैसे बच्चे। लौकिक बाप के हैं लौकिक बच्चे, अर्थात जिस्मानी बच्चे। अभी तुम बच्चों को ये समझना है, क्या समझना है, कि हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा हमको वर्षा देने आए हैं। हम उनके बच्चे बनेंगे तो स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलेगा, तो पहले तो उनका बच्चा बनना पड़ेगा, फिर स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलेगा। वो है ही स्वर्ग स्थापन करने वाला, फिर हम उनके स्टूडेंट्स भी है, बच्चे भी हैं तो स्टूडेंट्स भी है, ये भूलना नहीं चाहिए। बच्चों की बुद्धि में रहता है शिव बाबा मधुबन में मुरली बजाते हैं, सेंटरों पर तो ऐसे ही समझते ना, जरूर समझेंगे शिव बाबा मधुबन में मुरली बजाते हैं। वो काठ की मुरली तो यहाँ नहीं है, कई बार आते ना उनको पता नहीं होता, कहते हैं मुरली सुनते हैं मुरली सुनते हैं, फिर वो आकर देखते हैं ये तो कागज की है मुरली और यहाँ ये सुना रहे हैं। तो क्या मुरली सुनना है तो वो मुरली वो काठ की मुरली होगी, उनको समझ में नहीं आता कि कौन सी मुरली, वो ही मुरली समझते हैं बांसुरी। तो बाबा कहते हैं ये शिव बाबा मधुबन में मुरली बजाते हैं, वो काठ की मुरली तो यहाँ नहीं है, वो बांसुरी जो बैम्बू से बनाते वो मुरली तो यहाँ नहीं है। श्री कृष्ण का डांस करना मुरली बजाना ये सब भक्ति मार्ग का है, भक्ति मार्ग में करते हैं, वो कृष्ण भी बनेगा फिर वो बांसुरी भी बजाएगा, तो भक्ति मार्ग में ये सब करते हैं। बाकी ज्ञान की मुरली तो शिव बाबा ही बजाते हैं, ज्ञान की मुरली श्री कृष्ण नहीं बजा सकता है, वो तो केवल शिव बाबा ही बजाते हैं ज्ञान की मुरली। तुम्हारे पास अच्छे अच्छे गीत बनाने वाले आएंगे, उस समय बाबा के पास ऐसे थे नहीं जो गीत बना सके, अभी तो कितने बाबा के बच्चे गीत बनाने वाले बन गए हैं, गीत गाने वाले बनाने वाले सब कुछ बहुत आ गए हैं बाबा के पास। अच्छे अच्छे गीत बनाने वाले आएंगे, गीत अक्सर करके पुरुष ही बनाते हैं, उस समय भी जो भी गीतकार थे सब पुरुष ही तो थे, कोई फीमेल तो थी नहीं गीतकार, गीत बनाने वाली पुरुष ही थे। तो बाबा कहते हैं गीत अक्सर करके पुरुष ही बनाते हैं, तुमको ज्ञान के गीत ही गाने चाहिए, सुना, ज्ञान के गीत ही गाने चाहिए जिससे शिव बाबा की याद आए। बाप कहते हैं मुझ अलफ को याद करो, शिव को कहते हैं बिंदु। व्यापारी लोग बिंदु लिखेंगे तो कहेंगे शिव, खास सिंधियों में ये विशेष है, हाँ तो लिखेंगे जीरो लिखना है तो कहेंगे लिख शिव, हाँ चौ शिव, हाँ तो चौ शिव माना बिंदु, तो कहेंगे शिव। एक के आगे बिंदु लिखो तो दस हो जाएगा, फिर बिंदु लिखो तो सौ हो जाता है, फिर बिंदु लिखो तो हजार हो जाएगा। तो तुमको भी शिव को याद करना है, जितना शिव को याद करेंगे बिंदी बिंदी लगती जाएगी, बिंदी बिंदी लगती जाएगी, एक शिव को याद करने से जीरो 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 उसके आगे लगते जाएंगे। तुम आधा कल्प के लिए साहूकार बन जाओगे, है ना, कितना सस्ता सौदा, बिंदु लगाते जाओ और साहूकार बनते जाओ। वहां गरीब तो होता ही नहीं है, सब सुखी रहते हैं, दुख का नाम नहीं। बाप की याद से विकर्म विनाश होते जाएंगे, तुम बहुत धनवान बनेंगे। इसको कहा जाता है सच्चे बाप द्वारा सच्ची कमाई, बाबा की याद से सच्ची कमाई होती है, तो सच्चे बाप द्वारा सच्ची कमाई यही साथ चलेगी, ये कमाई साथ चलेगी। मनुष्य सब खाली हाथ जाते हैं, केवल वो धन इकट्ठा करते हैं, बैंकों में जमा करते जाते हैं, घरों में भी जमा करते जाते हैं, परंतु वो तो हाथ खाली जाएंगे, सब यहीं छूट जाना। तो मनुष्य सब खाली हाथ जाते हैं, तुमको तो भरतू हाथ जाना है। बाप को याद करना है तो बाप ने समझाया है, प्योरिटी होगी तो पीस प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, बिना प्योरिटी के पीस प्रॉस्पेरिटी नहीं मिलती। तुम आत्मा पहले प्योर थी, फिर इम्प्योर बनी हो, सन्यासियों को क्या कहेंगे, वो भी पवित्र तो बनते हैं ना, पवित्र रहते हैं, तो उनको कौन सी पवित्रता कहेंगे। बाबा कहते हैं सन्यासियों की भी को भी सेमी प्योर कहेंगे, आधा प्योर बना, ब्रह्मचर्य में तो रहते हैं लेकिन पूरी दुनिया का सन्यास वो तो नहीं करते ना। और यहाँ तो बाबा कहते हैं तुम पूरी दुनिया का सन्यास करते हो, तो सन्यासियों को भी सेमी प्योर कहेंगे, पर तुम्हारा है फुल सन्यास, पूरी दुनिया से बुद्धि को हटाते, तुम्हारा है फुल सन्यास। तुम जानते हो वो कितना सुख लेते हैं, सेमी सन्यासी किया है, केवल पवित्र रहते हैं परंतु कितना सुख लेते हैं, थोड़ा सुख है फिर तो दुखी है। रोगी तो वो भी बनते ना, ऐसे थोड़ी सन्यासी रोगी नहीं बनते हैं, कैंसर भी हो जाता है उनको। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को भी दिख बताते ना, कैंसर हो गया था, वो बोल ही नहीं पाते थे, गले का कैंसर हो गया था। तो थोड़ा सुख है फिर तो दुखी है। आगे वो लोग सर्वव्यापी नहीं कहते थे, जो वेदों में है, ऋषि मुनियों ने जो भी वेद बनाए उसमें सर्वव्यापी है परमात्मा ये नहीं लिखा है, बेअंत बेअंत, नेति नेति, नहीं जानते, अंत नहीं पा सकते। लेकिन बाद में फिर जैसे गीता जो लिखी गई, फिर उसमें सर्वव्यापी की बात आ गई, तो फिर सर्वव्यापी कहने लगे। तो जो प्राचीन ऋषि मुनि थे वो नहीं सर्वव्यापी कहते थे। तो बाबा कहते हैं आगे वो लोग सर्वव्यापी नहीं कहते थे, सर्वव्यापी कहने से गिरते जाते हैं। दुनिया में अनेक प्रकार के मेले लगते हैं, क्योंकि आमदनी तो होती है ना, मेले लगते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं मेलों में, आमदनी तो होती ही है ना, ये भी उनों का धंधा है, मेले लगाते हैं तो आमदनी होती है, धंधा है। जैसे कहते हैं धंधे सब में है धूल, धंधे जो भी दुनिया में करते हैं, धन कमाते हैं, वो उन सब में है धूल। बिगर धंधे नर से नारायण बनने के, हमारा भी तो धंधा है ना, नर से नारायण बनाते हैं सबको, तो ये भी धंधा करते हैं। तो बिगर धंधे नर से नारायण बनने के, ये धंधा कोई विरला करे, नर से नारायण बनने का धंधा कोई विरला करे। बाप का बनकर सब कुछ दे सहित बाप को दे देना है, ट्रस्टी बन जाना है बाप को, बाप का बनकर सबको दे सहित बाप को दे देना है। क्योंकि तुम चाहते हो नया शरीर मिले, अब भगवान के बन गए तो मरना पड़ेगा, क्योंकि तुम जानते हो भगवान से प्रीत रखेंगे तो मरेंगे, फिर नया शरीर मिलेगा। तो क्योंकि तुम चाहते हो नया शरीर मिले, तो बाप कहते हैं तुम कृष्णपुरी में जा सकते हो, जरूर कृष्णपुरी में जा सकते हो, परंतु क्या करना होगा उसके लिए, परंतु आत्मा जब तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, मरना माना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना, तो सतो प्रधान बने। अब श्री कृष्णपुरी में ऐसे नहीं कहेंगे, वहां क्या नहीं कहेंगे, कई बार शब्द है बाबा कहते वहां नहीं कहेंगे, तो आज बाबा कहते श्री कृष्णपुरी में ऐसे नहीं कहेंगे, हमको पावन बनाओ, हमको पावन बनाओ। ये भक्तवा है ही नहीं जो बस श्री कृष्णपुरी में भगवान को ऐसे कहे। यहाँ तो सभी मनुष्य मात्र पुकारते हैं, हे लिबरेटर आओ, इस पाप आत्माओं की दुनिया से हमको लिबरेट करो। आत्माएं पुकारती है, अभी तुम जानते हो बाप आया है हमको अपने साथ ले जाने। वहां जाना तो अच्छा है ना, घर जाना परम धाम में बाबा के साथ। ये बाबा कहते जी ये जाना तो अच्छा है ना। मनुष्य तो शांति चाहते हैं, अब शांति किसको कहते हैं? शांति शांति करते वो शांति किसको कहते हैं? कर्म बिगड़ तो कोई रह न सके। एकदम शांति हो तो उसके लिए कर्म का भी संन्यास समझते हैं, कर्म संन्यासी है। घर बार छोड़ दिया, खाना वाना नहीं पकाते हैं, गृहस्थी लोग उनके शिष्य आकर के उनको खाना देते हैं। तो यहाँ भी है, हाँ तो स्वामी गए थे हम संन्यास उनसे मिलने के लिए, तो देखा तो किचन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक कुटिया में वो बैठे थे। तो हमने कहा खाना कहाँ कौन पकाता है? कहा हम तो संन्यासी है, हम खाना नहीं पकाते हैं, हमको तो गृहस्थी आकर के देखे जाते हैं। और यहाँ तो बाबा कहते हैं खुद हाथ से पकाना है, बाबा की याद में पकाना है, भोग लगाना है। तो देखो कितना अंतर है। तो वो समझते हम कर्म संन्यासी है, खाना पकाना ये भी कर्म करना है, तो इसलिए हम तो ये कर्म नहीं करते। तो बाबा कहते हैं अब शांति किसको कहते हैं? कर्म बिगड़ तो कोई रह न सके। आत्मा जब शरीर में है तो उसको कर्म तो करना ही पड़ता है। गीता में भी आता है कि कर्म संन्यास से कर्म योग संन्यास श्रेष्ठ है। कर्म करते योग में रहना और विकारों का संन्यास, बाकी कर्म संन्यास तो होता ही नहीं है। आत्मा शरीर में है तो कर्म तो करना ही है। तो बाबा कहते हैं अब कर्म बिगड़ तो कोई रह न सके। शांति तो है ही शांति धाम में, जहाँ आत्मा को कोई कर्म नहीं है क्योंकि शरीर ही नहीं है, तो इसीलिए वो कर्म संन्यासी है जैसे परम धाम। पर इस संसार में तो कर्म संन्यास नहीं हो सकता। शांति तो है ही शांति धाम में, फिर भी शरीर लेकर कर्म तो करना ही है। सतयुग में कर्म करते हुए भी शांति रहती है। अब सतयुग की शांति कैसे है? कर्म भी करते हैं और शांति भी है। अशांति में मनुष्य को दुख होता है, इसलिए कहते हैं शांति कैसे मिले। अभी तुम बच्चे जानते हो शांति धाम तो हमारा घर है। सतयुग में शांति भी है तो सुख भी है, सब कुछ है। अब वो चाहिए, अब वो चाहिए, शांति भी हो और सुख भी हो, सब कुछ हो, वो चाहिए या सिर्फ शांति चाहिए? क्या चाहिए? लोग कहते हैं ना शांति चाहिए, तो उनसे पूछो केवल शांति चाहिए तो या साथ साथ सुख भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, धन भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो चाहिए, या कि सिर्फ शांति चाहिए? तो फिर वो मूंझ पड़ेंगे। हाँ वो समझते शांति चाहिए माना ये सब होते हुए भी शांति हो, पर वो तो बाबा कहते सतयुग में ही होगी। अब वो चाहिए या सिर्फ शांति चाहिए? यहाँ तो दुख है, सब कुछ वैभव है, सब है, तो दुख भी है। यहाँ तो दुख है, इसलिए पतित पावन बाप को भी यहाँ पुकारते हैं, भक्ति भी यहाँ ही करते हैं भगवान से मिलने लिए। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी थी, फिर व्यभिचारी होती है। व्यभिचारी भक्ति में देखो क्या क्या करते हैं। व्यभिचारी भक्ति कहाँ दिखाई है हमारे चित्रों में? व्यभिचारी भक्ति कहाँ दिखाई है? कौन से चित्र में व्यभिचारी भक्ति दिखाई है? सीढ़ी के चित्र में देखा है ना, सीढ़ी के चित्र में। तो द्वापर युग शुरू होता है, भक्ति शुरू होती है, तो पहले शिव की पूजा, फिर शिव की पूजा के बाद फिर देवताओं की पूजा, लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण राम, फिर राम सीता की पूजा, फिर तो प्रकृति की भी, फिर तो मनुष्यों की पूजा, मनुष्यों की भी पूजा करते हैं। हनुमान गणेश वो तो है ही है, लेकिन फिर मनुष्यों की, साधु संन्यासी उनकी भी पूजा, तो जैसे पूजा करते हैं फिर तो प्रकृति की पूजा, उस दिन बाबा ने कहा ना टिवाटे की भी पूजा करते हैं, जब तीन रास्ते मिलते हैं उसकी भी पूजा करते हैं, वहां भी सिंदूर विंदूर रखते हैं, फूल वूल रखते हैं और उसके मतलब पूजा करते हैं, जब तीन रास्ते मिलते हैं, तो प्रकृति की पूजा हो गई, जल की पूजा, सबकी पूजा, पांच तत्वों की भी पूजा। तो बाबा कहते हैं ये अंत की निशानी, और अभी तो भूत प्रेत पिशाच पता नहीं क्या मैली विद्या कलयुगी दुनिया में तो क्या नहीं है। कई बताते हैं ना कि कैसे वो आत्मा आती है, कुछ समझ ही नहीं आता है, वो प्रेत दिखाई देती है, कुछ छाया दिखाई देती है। अब ये कलयुगी दुनिया में तो बहुत कुछ हो रहा है। तो बाबा कहते हैं ये सब भक्ति का तमो प्रधान स्वरूप है, मैली विद्या जिसको बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं भक्ति भी पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी होती है। व्यभिचारी भक्ति में देखो क्या क्या करते हैं, सीढ़ी में कितना अच्छा दिखाया हुआ है, परंतु पहले पहले तो सिद्ध करना चाहिए, सीढ़ी का चित्र एकदम से नहीं दिखाना है, पहले क्या सिद्ध करना है, किसको ज्ञान देना है, तो पहले तो सिद्ध करना चाहिए कि भगवान कौन है, सबसे पहले तो भगवान का परिचय देना है। श्री कृष्ण को तो ऐसा किसने बनाया, कोई श्री कृष्ण की भक्ति करता है तो किसी को सीधा नहीं कहो श्री कृष्ण भगवान नहीं है, लेकिन पहले उनसे ये पूछो अच्छा श्री कृष्ण की भक्ति करते हो तो श्री कृष्ण को भी ऐसा किसने बनाया, वो तो मुन जाएगा उसको किसने बनाया पूछेंगे तो श्री कृष्ण को भी ऐसा किसने बनाया, आगे जन्म में वो कौन था, पूर्व जन्म में वो श्री कृष्ण की आत्मा कौन थी, अगर पूछेंगे तो वो समझेंगे नहीं, इसलिए समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। तो श्री कृष्ण को भी किसने बनाया, उसके पूर्व में वो क्या था, पूछेंगे तो समझेंगे नहीं, तो समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी दिल भी शाहिदी देती है, गवाही देती है अच्छी सर्विस करते कि मैंने इसको सेटिस्फाई किया है ना। कई प्रश्न पूछते और अगर हम उसको सेटिस्फाई करते हैं वो खुश होता है तो हमको भी अच्छा लगता कि हाँ हमने उसको सेटिस्फाई किया। तो शायदी देती है दिल। यूनिवर्सिटी में जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो जरूर दिखे जाएंगे, नंबर वार तो होते ही है ना, कोई तो डल हेड भी होते हैं, भले यूनिवर्सिटी में एडमिट तो हुए लेकिन डल हेड होते हैं। अब शिव बाबा को अभी शिव बाबा की यूनिवर्सिटी में भी है लेकिन कई डल हेडेड है, शिव बाबा की यूनिवर्सिटी में समझते ही नहीं है ज्ञान। फिर शिव बाबा को आत्मा कहती है, अब डल हेडेड है ज्ञान समझ में नहीं आता है तो वो फिर शिव बाबा को क्या कहती है आत्मा, वो कहती है बाबा मेरी बुद्धि का ताला खोलो, मेरी बुद्धि का ताला खोलो, या कहेंगे मेरे पति की बुद्धि का ताला खोलो। अब बाबा को कहते मेरी मेरी बुद्धि का ताला खोलो तो बाबा जवाब क्या देंगे, कैसे क्या जवाब देंगे, तो बाबा कहते हैं बुद्धि का ताला खोलने के लिए ही तो आया हूँ, किस लिए आया शिव बाबा, बुद्धि का ताला खोलने के लिए तो आया, सबकी बुद्धि को ताला लगा हुआ था, मैं कौन परमात्मा कौन कुछ पता ही नहीं था, तो जैसे बुद्धि का ताला बंद था, अब भगवान ने ज्ञान देकर बुद्धि का ताला तो खोल दिया है, परंतु फिर परंतु भी बाबा कहते हैं तो खोलने पर बुद्धि का ताला खोलने तो आया हूँ, परंतु फिर भी अगर बुद्धि का ताला नहीं खुलता है, समझ में नहीं आता है ज्ञान, परंतु तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं, बाबा कहते तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं जो ताला खुलता ही नहीं है, समझ में नहीं आता है ज्ञान, तो बाबा भी क्या करेगा, फिर बाबा क्या करेंगे, बाबा भी कुछ नहीं कर सकता है। अब टीचर भी देखो पर नहीं समझता बच्चा तो उनके लिए ट्यूशन रखते हैं, अब ट्यूशन भी कितना रखे टीचर, पढ़ाए भी पर्सनल भी पढ़ाए इंडिविजुअल कोई पढ़ाए, लेकिन उसकी बुद्धि नहीं चलती है तो टीचर भी क्या करेगा। तो बाबा कहते हैं परंतु तुम्हारे कर्म ऐसे हैं जो ताला बिल्कुल खुलता ही नहीं, फिर बाबा भी क्या करेंगे? बहुत पाप किए हुए हैं, अब बताओ क्यों नहीं ताला खुलता? बाबा कहते बहुत पाप किए हुए हैं, बहुत पाप किए हुए हैं। अब बाबा उनको क्या करेंगे? क्या करेंगे बाबा? हाँ, टीचर को अगर स्टूडेंट कहे कि हम कम पढ़ते हैं तो टीचर क्या करेंगे? चलो टीचर कोई कृपा तो नहीं करेंगे ना, करके उसको एक्स्ट्रा टाइम दे करके फिर थोड़ा पढ़ाएंगे, इंडिविजुअल भी थोड़ी मेहनत करेंगे टीचर स्टूडेंट पर, एक्स्ट्रा टाइम रखेंगे। अब वो तो तुमको मना नहीं है, तुमको मना नहीं है, कोई बात नहीं समझ में आती है तो पूछ सकते हो, मुरली का अध्ययन करो अच्छी तरह से, तो बाबा कहते वो थोड़ी मना है। तो बाबा कहते हैं टीचर क्या करेंगे? टीचर कोई कृपा तो नहीं करेंगे ना, करके उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम रखेंगे। वो तो तुमको मना नहीं है, प्रदर्शनी खुली पड़ी है, कई बार दूसरों को समझाते समझाते भी हमारी बुद्धि में भी अच्छी तरह से ज्ञान आ जाता है, इसीलिए समझाने की भी प्रैक्टिस बाबा कहते करो, प्रदर्शनी खुली पड़ी है, प्रदर्शनी खुली पड़ी है, बैठकर प्रैक्टिस करो। आजकल म्यूजियम है सब जगह, क्या नहीं है, बहुत सेवा है। कल एक भाई आया मेरे पास, कहता है हमारे सेंटर पर कोई सेवा नहीं है, कोई हमारी टीचर सेवा करती नहीं है, कोई एग्जीबिशन रखती नहीं है, हम क्या करें, क्या सेवा करें? हम कहते चलो आप ही इंडिविजुअली सेवा करो, कहाँ भी जाओ सेवा कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। चलो कर्म वाचा नहीं है, मनसा कर्मणा तो है ही है ना, वो भी कर सकते हो, सेवा नहीं सेवा नहीं ऐसे थोड़ी कहना होता है। तो बाबा कहते हैं प्रदर्शनी खुली पड़ी है, बैठकर प्रैक्टिस करो। भक्ति मार्ग में तो कोई कहेंगे, वहाँ क्या कहेंगे गुरु, वहाँ भक्ति मार्ग में तो कोई कहेंगे माला फेरो, ये माला लो और माला फेरो, कोई कहेंगे ये मंत्र जाप करो, हाँ मंत्र याद करो। यहाँ तो बाप अपना परिचय देते हैं, बाप को याद करना है जिससे वर्षा मिल जाता है, तो अच्छी तरह से बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए ना। इसमें भी बाप कहते हैं विकार में कभी नहीं जाना है, वर्षा तो लेना है पहले, पवित्र भी तो बनना है ना, विकार में कभी नहीं जाना। थोड़ी भी विकार की टेस्ट बैठी, विकार की टेस्ट कैसे बैठती है, फेमिलियरिटी, वो शुरुआत होती है विकार की, किसी के देह पर आकर्षित होना। तो बाबा कहते हैं थोड़ी भी विकार की टेस्ट बैठी तो फिर वृद्धि हो जाएगी। सिगरेट आदि की भी एक बार भी टेस्ट करते हैं तो संग का रंग झट लग जाता है। सिगरेट की भी टेस्ट होती है, कई होते हैं दोस्त मिल गए, हम सिगरेट नहीं पीते, हम कहेंगे, वो कहे अरे पियो रे, एक बार पी लो, क्या फर्क पड़ा, टेस्ट तो करो, कुछ नहीं होता है, हर चीज की टेस्ट करनी चाहिए। और उठा करके चलो एक बार पिया, फिर क्या होगा, हाँ एक बार तो पी लिया, अब एक बार पी लिया, चलो दोबारा नहीं पियेंगे, सिगरेट नहीं पियेंगे। पर किसी व्यक्ति ने आपको वो एक बार पीता हुआ देखा, वो क्या कहेगा, अरे ये तो सिगरेट पीता है ना, तो एक बार भी क्यों, क्यों पीना, जरूरत क्या है? तो बाबा कहते हैं सिगरेट आदि की एक बार भी टेस्ट करते हैं तो संग का रंग झट लग जाता है, फिर आदत छोड़ना भी मुश्किल हो जाती है, फिर तो इतनी आदत पड़ जाती है कि छोड़ना चाहो तो भी छोड़ नहीं पाते। फिर हम लोग क्या कहते हैं भाषण में सुनाते ना, 3 इंच की सिगरेट, मान लो 2-2.5 इंच जितनी भी इंच की सिगरेट होती है, और 6 फीट का इंसान, वो 6 फीट का इंसान वो 3 इंच की सिगरेट का गुलाम, ये मनुष्य आजकल हो गए, एक सिगरेट पूरा हुआ दूसरा सुलगा तीसरा सुलगा, समझते, ये तो शान है हमारी दुनिया में तो ऐसा ही है। तो बाबा कहते हैं फिर आदत छोड़ना भी मुश्किल हो जाती है, बहाना फिर कितना करते हैं, कई तो ये बहाना देते हैं ना, सिगरेट सवेरे सवेरे नहीं पियेंगे तो पेट साफ नहीं होता है ऐसे भी है बोलने वाले। तो आदत कोई नहीं पड़नी चाहिए, आदत कोई नहीं पड़नी चाहिए, छींची आदतें भी मिटानी है। तो बाप कहते हैं, जीते जी शरीर का भान छोड़ मुझे याद करो। देवताओं को भोग हमेशा पवित्र ही लगाया जाता है। उसमें बाबा ने कहा, सिगरेट बीड़ी का भोग लगाते हैं क्या भगवान को? तो देवताओं को भोग हमेशा पवित्र ही लगाया जाता है, तो तुम भी पवित्र भोजन खाओ। आजकल तो बाबा ने कहा, आजकल तो सच्चा घी तो मिलता ही नहीं है, तेल ही खाते हैं, वनस्पति तेल खाते हैं। वहाँ तेल आदि तो होता नहीं, सतयुग में तो घी दूध की तो नदियां हैं, वहाँ तेल आदि तो होता नहीं सतयुग में। यहाँ तो डेयरी में देखो प्योर घी रखा है, फिर जूठा भी रखा है, और दोनों पर लिखा है प्योर घी। वो उसमें मिलावटी है घी, परंतु लिखा होगा प्योर घी। और दूसरा तो प्योर घी तो अंतर भी करना मुश्किल हो जाता है कि एकदम सच्चा घी कौन सा और मिलावट वाला घी कौन सा है। तो दोनों पर लिखा हुआ है प्योर घी। हाँ, दाम में फर्क पड़ जाता है, थोड़ा दाम में फर्क तो समझेंगे इसमें थोड़ी मिलावट है और ये इसमें नहीं है। अब तुम बच्चों को फूल माफिक खिला हुआ हर्षित रहना चाहिए, फूल माफिक खिला हुआ हर्षित रहना चाहिए। स्वर्ग में तो नेचुरल ब्यूटी रहती है, वहाँ प्रकृति भी सतो प्रधान हो जाती है। लक्ष्मी नारायण जैसी नेचुरल ब्यूटी कोई बना न सके। बाबा ने फिर आगे क्या कहा, नेचुरल ब्यूटी की जहाँ बात आती है, नेचुरल ब्यूटी लक्ष्मी नारायण की यहाँ कोई बना न सके। भले कितने भी सुंदर सुंदर चित्र बनाते लक्ष्मी नारायण के, उनको इन आँखों से तो कोई देख थोड़ी सकते हैं। जब प्रैक्टिकल में लक्ष्मी नारायण होंगे, ये कलयुगी आँखों से थोड़ी कोई हम उनको देख सकेंगे, इनको थोड़ी देख सकते हैं। हाँ, साक्षात्कार होता है, लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार होने से कोई हूबहू चित्र बना थोड़ी सकेंगे। चलो किसको साक्षात्कार हुआ और उसने थोड़ा उसका वो आर्टिस्ट भी हो और साक्षात्कार भी उसको हुआ और थोड़ा बनाने की कोशिश की, लेकिन जो देखा वो थोड़ी वो बना सकेंगे। हाँ, इसमें गुलजार दादी का अनुभव है। गुलजार दादी जब पहली बार आई अपनी माँ के साथ यज्ञ में, तो बाबा को देखते ही ध्यान में चली गई। देखते ही पहली बार आते ही, 8-9 साल की थी केवल, और ध्यान में चली गई। तो जब ध्यान से नीचे उतरी तो सबने पूछा, क्या देखा तुमने, क्या देखा, क्या देखा? वो तो इतनी शाय, इतनी वो कुछ बोलती नहीं थी, ज्यादा बोलती भी नहीं थी, अभी भी लास्ट में कहा बोलती थी, कुछ भी नहीं, तो कुछ नहीं बोल पाई। अब कुछ नहीं बोल पाई तो चित्र दिखाया उनको श्री कृष्ण का, तुमने ये देखा? कहती नहीं। ये देखा श्री कृष्ण की कई चित्र दिखाए? नहीं नहीं। ये देखा? नहीं। तो क्यों नहीं बोल पाई? देखा तो श्री कृष्ण को ही, लेकिन क्यों नहीं बोल पाई? क्योंकि वो जो चित्र देखा, अब वो जो सचमुच श्री कृष्ण देखा, उसने उसकी भेंट में वो चित्र तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था चित्र। आजकल देखो कैसे श्री कृष्ण के चित्र बनाते हैं, तो प्रैक्टिकल में तो श्री कृष्ण कैसा सुंदर होगा, तो उस रूप में तो था ही नहीं, इसलिए वो कैसे कहेगी मैंने यही देखा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, हाँ साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार होने से कोई हूबहू चित्र बना थोड़ी सकेंगे। हाँ, कोई आर्टिस्ट को साक्षात्कार होता जाए और उस समय बैठ बनाए, वो साक्षात्कार भी हो रहा है और वो आर्टिस्ट उस समय बैठ बनाए, परंतु ये बड़ा मुश्किल है कि वो उस समय बनाए। तो तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। अभी हमको बाबा लेने आया हुआ है, बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना है। अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए, ऐसे ऐसे ख्याल बुद्धि में रहने से खुशी होगी। विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं, काम महाशत्रु है, द्रौपदी ने भी इसलिए पुकारा ना, उनको कोई पांच पति नहीं थे, द्रौपदी को पांच पति नहीं थे, वो तो पुकारती थी कि हमको ये दुशासन नंगन करते हैं, इससे बचाओ। फिर पांच पति कैसे हो सकते हैं, वो तो अपनी पवित्रता की रक्षा करना चाहती थी, तो पांच पति कैसे हो सकते हैं। अब ऐसी बातें तो हो नहीं सकती, घड़ी घड़ी तुम बच्चों को नई नई पॉइंट्स मिलती रहती है, तो फिर चेंज करना पड़े, जो लिखत बनाते उसमें थोड़ी चेंज करनी पड़े, बाबा नई नई पॉइंट्स देते हैं, कुछ न कुछ चेंज कर अक्षर डाल देना चाहिए। अच्छा तो फिर अब और क्या लिखते हैं, तुम लिखते हो कि थोड़े समय के अंदर हम इस भारत को परिस्थान बनाएंगे, तुम चैलेंज करते हो, बाप कहेंगे बच्चों से सन शोज फादर, चैलेंज करो हाँ कि हम थोड़े समय में इस भारत को परिस्थान बनाएंगे। सन शोज फादर, फादर शोज सन, फादर कौन सा, शिव, और हम बच्चे कौन से, सन शोज फादर, तो हम कौन, हम बच्चे सालीग्राम, तो शिव और सालीग्राम, गायन तो इनका है ना, शिव बाबा जो समझाते हैं उस पर फॉलो करो, फॉलो फादर भी गायन उनका है। लौकिक फादर को फॉलो करने की बात नहीं है, क्यों लौकिक फादर को फॉलो नहीं करना है, लौकिक फादर को फॉलो करने से तो तुम पतित बन जाते हो, ये लौकिक फादर मना वो भी तो पतित ही थे ना, विकारी पे, तो इसीलिए वो तो तुम पतित बन जाते हो, ये तो फॉलो कराते हैं पावन बनाने के लिए। शिव बाबा कहते हैं मुझे फॉलो करो, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, तो वो फॉलो कराते हैं पावन बनने के लिए, फर्क है ना। और हाँ तो वो लौकिक पिता तो फिर कहेगा शादी करो, तो और ही पतित बनाने के लिए थोड़ी फॉलो करना है। तो बाप कहते हैं मीठे बच्चे फॉलो कर पवित्र बनो, फॉलो करने से ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। लौकिक बाप को फॉलो करने से क्या हुआ, 63 जन्म तुम सीढ़ी नीचे उतरते आयो। कई तो लौकिक पिता बहुत अच्छे होते हैं, कितनी अच्छी अच्छी शिक्षाएं बच्चों को देते हैं, लेकिन फिर वो कमी तो है ना, पवित्र तो नहीं है। तो लौकिक बाप को फॉलो करने से 63 जन्म तुम सीढ़ी नीचे उतरते आए हो, अब बाप को फॉलो कर ऊपर चढ़ना है, बाप के साथ जाना है। बाप कहते हैं यह एक एक रत्न, ज्ञान का एक एक रत्न लाखों रुपयों का है, तुम बाप को जानकर बाप से वर्षा पाते हो, वो तो कहते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, तुम बाप से, बाप को याद कर, बाप को फॉलो कर वर्षा पाते हो, और सन्यासी क्या कहते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अब लीन तो होना ही नहीं है, फिर आएंगे जरूर, बाप रोज रोज समझाते रहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पहले पहले सबको बाप का परिचय देना है। पारलौकिक बाप वर्षा देते हैं, किस लिए वर्षा देते हैं, पावन बनाने का, कौन सा वर्षा देते हैं, पहले बाप पावन बनाने का, इसलिए बेहद के बाप को कहते ही हैं आकर पावन बनाओ, वो है पतित पावन। लौकिक बाप को तो पतित पावन नहीं कहेंगे ना, कौन से बाप को पतित पावन कहेंगे, शिव बाबा को ही कहेंगे, वो खुद ही पुकारते रहते हैं, लौकिक बाप भी खुद ही पुकारता रहता है पतित पावन, तो लौकिक बाप तो खुद ही पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो दो बाप का परिचय सबको देना है। लौकिक बाप कहेंगे शादी कर पतित बनो, और पारलौकिक बाप कहते हैं, पारलौकिक बाप कहते हैं पावन बनो, तो लौकिक बाप कहते हैं शादी कर पतित बनो, और पारलौकिक बाप कहते हैं पावन बनो, मेरे को याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। एक बाप सबको पावन बनाने वाला है, ये पॉइंट्स बहुत अच्छी है समझाने की। तो भिन्न भिन्न प्रकार की पॉइंट्स विचार सागर मंथन कर समझाते रहो, ये तुम्हारा ही धंधा हुआ। क्या धंधा है हमारा? भिन्न भिन्न पॉइंट्स बुद्धि में रख फिर समझाते रहो, ये तुम्हारा ही धंधा हुआ। तुम हो ही पतितों को पावन बनाने वाले, पारलौकिक बाप अभी कहते हैं पावन बनो, जबकि द्वापुर में आकर के नहीं कहा पावन बनो, परंतु अभी कहते अंत में जबकि विनाश सामने खड़ा है, विनाश सामने खड़ा है तब कहते हैं पावन बनो। अब क्या करना चाहिए? जरूर पारलौकिक बाप की मत पर चलना चाहिए ना, ये भी प्रतिज्ञा लिखानी चाहिए प्रदर्शनी में, पारलौकिक फादर को फॉलो करेंगे, ये प्रतिज्ञा लिखवाओ एग्जीबिशन में। पतित बनना छोड़ेंगे? लिखो, बाप से गारंटी लेते हैं। सारी बात है ही प्यूरिटी की, तुम बच्चों को दिन रात खुशी होनी चाहिए, बाप हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। अलफ और बे, अलफ बाप और बे बादशाही। अभी तुम समझते हो शिव जयंती माना ही भारत के स्वर्ग की जयंती। पहले शिव जयंती बाबा ने बताया, कल शिव जयंती माना गीता जयंती, फिर गीता जयंती के बाद रक्षाबंधन, फिर कृष्ण जयंती। आज बाबा कहते हैं शिव जयंती माना ही भारत के स्वर्ग की जयंती। गीता ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है, गीता माता है, वर्षा तो बाप से ही मिलेगा। गीता का रचयिता है ही शिव बाबा, पारलौकिक बाप से पावन बनने का वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, हम गॉडली स्टूडेंट है, ये सदैव स्मृति में रखना है। हम गॉडली स्टूडेंट है ये सदैव स्मृति में रखना है। कोई भी छीछी आदत नहीं डालनी है, उन्हें मिटाना है। विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। दूसरा, जीते जी शरीर का भान भूलकर बाप को याद करना है। भिन्न भिन्न पॉइंट्स विचार सागर मंथन कर पतितों को पावन बनाने का धंधा करना है। वरदान, वरदान सारा संतुष्टता पर है। संतुष्टता के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले उच्च पद के अधिकारी भव। संतुष्टता के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले उच्च पद के अधिकारी भव। सदा सफल होने के लिए बाप और परिवार से ठीक कनेक्शन चाहिए। सदा सफल होने के लिए बाप और परिवार से ठीक कनेक्शन चाहिए। हर एक को तीन सर्टिफिकेट लेने हैं, एक बाप का सर्टिफिकेट, दूसरा आप यानी खुद का भी सर्टिफिकेट, और तीसरा परिवार का सर्टिफिकेट। परिवार को संतुष्ट करने के लिए क्या करना होगा? परिवार को संतुष्ट करने के लिए छोटी सी बात याद रखो। अगर परिवार को संतुष्ट करना है, सबको संतुष्ट करना है, तो छोटी सी बात याद रखो। क्या, कौन सी बात याद रखो? कि रिगार्ड देने का रिकॉर्ड निरंतर चलता रहे। सबको रिगार्ड दो। परिवार को संतुष्ट करने लिए, अलौकिक परिवार को संतुष्ट करने लिए सबसे बड़ी बात, सबको रिगार्ड दो। तो रिगार्ड देने का रिकॉर्ड निरंतर चलता रहे, इसमें निष्काम बनो, ये नहीं ये इससे मुझे क्या मिलेगा, मैं क्यों इसको रिगार्ड दूं, नहीं, इसमें निष्काम बनो, कोई इच्छा नहीं रखो किसी से, बस रिगार्ड दो। बाप को संतुष्ट करने लिए क्या करो, परिवार को संतुष्ट करने लिए सबको रिगार्ड दो, और बाप को संतुष्ट करने लिए सच्चा बनो, बाबा से सच्चा बनो, और स्वयं से संतुष्ट होने के लिए क्या करो, और स्वयं से संतुष्ट रहने के लिए सदा श्रीमत की लकीर के अंदर रहो, जो श्रीमत मिलते उस पर चलो तो खुद भी अंदर संतुष्ट रहेंगे। ये तीन सर्टिफिकेट ऊंच पद का अधिकारी बना देंगे। स्लोगन, जो चित्र को न देख चैतन्य और चरित्र को देखते वही श्रेष्ठ चरित्रवान है। श्रेष्ठ चरित्रवान किसको कहेंगे, जो चित्र को न देख शरीर को न देख चैतन्य और चरित्र को देखते हैं वही श्रेष्ठ चरित्रवान है। अव्यक्ति सारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो के अंतर्गत जैसे सर्व आत्माओं को ज्ञान की रोशनी देने के लिए सदैव शुभ भावना व कल्याण की भावना रखते हो, ऐसे अपने इस दैवी संगठन को भी एक रस स्थिति में स्थित कर संगठन की शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करो, तब आपके इस दैवी संगठन की मूर्त में एकता और एक रस स्थिति का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार होगा। बहुत बड़ी बात। अच्छा, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। अभी बाबा की याद में रहेंगे, उसके बाद डबल विदेशी भाई बहने बैठे रहेंगे, आज बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देने हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देने हैं, कोई भी उठेंगे नहीं। ये सूचना क्या है, रोज कोई न कोई सूचना आती है किसने शरीर छोड़ा है, रोज आज भी आ रही है, कल भी आया था, परसों भी आया था, तरसों भी आया था, लेकिन शिवरात्रि के कारण फिर कुछ कर नहीं सके। आज हम सबको योगदान देंगे, तो आज तो विशेष आया है कि पंजाब चंडीगढ़ मोहाली सेंटर के करमचंद भाई, बहुत पुराने भाई थे, 1969 से ज्ञान में चले और 70 से मोहाली सेंटर पर समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे थे। कुछ दिनों से आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, कल शाम को 5 बजे आपने अपना पार्थिव देह त्याग कर बाबा की गोद ली। ऐसे विशेष महान आत्मा को हम सभी योग में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। करमचंद भाई जी चंडीगढ़ टोटल पंजाब जोन के बहुत ही अनन्य रत्न थे, बहुत सेवा करते थे, हड्डी मेहनती थे, तो तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी और कल बाबा की गोद में गए, तो औरों ने भी कईयों ने शरीर छोड़ा है, सबके लिए अभी हम सब 3 मिनट पहले उन सब आत्माओं को योगदान देंगे और उसके बाद डबल विदेशी भाई बहने बैठे रहेंगे, आज का प्रोग्राम बताएंगे, और जो भी नीचे से आए हैं वो सब ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में नाश्ता और भोजन करेंगे। ओम शांति।